हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान रूपी महायज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के एक मुख्य विषय जीव यानी आत्मा के विषय में पढ़ा, और उसके अतिरिक्त हमारे ये शरीर क्या है, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, उसके विषय में पढ़ा। और अंतिम समय में जब कोई भक्त नहीं होता है उसके साथ क्या क्या होता है, और जो भक्त होते हैं उनके शरीर का और आत्मा और मन बुद्धि अहंकार के साथ क्या क्या होता है, उसके विषय में पढ़ा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सुनेंगे, और आज का विषय है भगवान। इस शब्द से तो आप सब परिचित हैं, किंतु इस संसार में भगवान कौन है? कुछ लोग, सबका अपना अपना मत होता है कि भगवान किसे कहते हैं। देखिए, लेकिन फिर भी हम जो सनातन धर्म के लोग हैं ना, इसने इस सवाल को इतना ज्यादा मतलब मुश्किल बना दिया है कि कोई भी इसका सही जवाब दे ही नहीं सक रहा है। आज अगर बहुत सारे मुसलमानों को, अगर करोड़ मुसलमान भी एक साथ खड़े करके उनको पूछे कि भाई भगवान कौन है, तो वो साथ में क्या कहेंगे? एक साथ एक आंसर, अल्लाह। बहुत सारे, अगर सारे तकरीबन है ना क्रिश्चियंस को खड़ा करके बोले कि भाई भगवान कौन है, तो बोलेंगे जीसस क्राइस्ट। लेकिन अगर 50 हिंदू सनातन धर्म के लोग होंगे, उनसे बोल के खड़ा करके बोला जाएगा कि भगवान कौन है, तो सबका अपना अपना एक मत होगा। कोई कहेगा कि देवी माता भगवान है, कोई कहेगा शंकर भगवान है, कोई कहेगा झूलेलाल भगवान है, कोई कहेगा शिवजी भगवान है, कोई बोलेगा गणपति भगवान है, कोई बोलेगा ये बाबा भगवान है, कोई बोलेगा ये संत भगवान है, कोई बोलेगा ये संप्रदाय के जो गुरु हैं वो भगवान है। मतलब हर एक के मन में एक अलग भगवान की विचारधारा है। बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि अभी तक हमें यही पता नहीं है कि भगवान कौन है। तो इस बात को हम शास्त्रों के अनुसार समझेंगे कि वास्तव में भगवान है कौन। स्टार्ट करते हैं कि इस संसार में कुछ लोग मानते हैं कि भगवान है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। संस्कृत में है को अस्ति कहा जाता है। जो ऐसा कहते हैं कि भगवान है उसे आस्तिक कहते हैं, और नहीं को नास्तिक कहा जाता है, और जो लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है उसे नास्तिक कहा जाता है। प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि आप हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भगवान कहते हैं, अगर भगवान है तो इसका प्रमाण क्या है? तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में भगवान कुछ नहीं है। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो संसार है ना इसकी व्यवस्थता बनी रहे, यानी कि कोई उत्पात ना मचे, इसलिए ऋषियों और आचार्यों ने भगवान की सत्ता बना रखी है, और भगवान के नाम को सब भगवान के नाम से डरा रहे होते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अगर तंग करता है तो माँ कहती है बेटा चुप कर जा वरना जिन बाबा आ जाएगा, ऐसे बोलते ना। इसलिए नहीं कि जिन बाबा आएगा, बल्कि उत्पात ना मचाए, वो चुप करके बैठ जाए, मस्ती वस्ती ना करे। इस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि वास्तव में भगवान नहीं है, यदि भगवान होते तो हमें कष्ट क्यों मिलता, हम सब सुखी होते क्योंकि भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान होते तो हम उन्हें देख सकते क्योंकि हमें संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है भगवान के अतिरिक्त। भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि भगवान है। हम अब इसका आंसर ये देख सकते हैं कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। भगवान की बात तो छोड़िए, क्या हम हवा को देख सकते हैं? तो क्या हवा नहीं है? तो वास्तव में भगवान का अस्तित्व है, यह नास्तिक धारणा बिल्कुल गलत है। तो आप फौरन पूछेंगे भाई प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण प्रूफ दीजिए कि भगवान है। अब उस भगवान है इसके करोड़ों प्रमाण है, करोड़ों बहुत सारे प्रमाण हैं, उसमें से कुछ हम अभी यहाँ पर प्रूफ साबित करेंगे कि भगवान है। भगवान है इसका पहला प्रमाण। इस संसार में हम बहुत कुछ ऐसी रचनाएं यानी क्रिएशंस देख रहे हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई रचनाकार है, कोई ना कोई क्रिएटर है। जैसे माइक है तो उसको किसी ने बनाया है। इस संसार में बहुत सारे फूल हैं जो अद्भुत हैं, उनमें खुशबू है, वो खिल रहे हैं, तो आप देखिए कि कोई बालक जब आपके सामने एक फूल ड्राइंग पर बना के आता है तो आप क्या कहोगे, वाह कितना सुंदर फूल है, ये किसने बनाया? बालक अगर ये कहे कि खुद ब खुद बन गया तो आप विश्वास करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं, किसी न किसी ने तो इस सुंदर आकृति को बनाया है। यदि ड्राइंग के पीछे किसी का हाथ है तो ये इतना सुंदर बागीचा, ये फल फूल इत्यादि जो रियल है वो किसी ने तो जरूर बनाए होंगे, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो जिसने होगा जिसने ये बनाए हैं। अब वो कौन है उसको बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन आस्तिक तो बनना पड़ेगा कि कोई ना कोई है। प्राय जो साइंसदान होते हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिकली ही बन गया है बाय चांस। किसका फलसफा, ये किसका थ्योरी है? डार्विन का सिद्धांत। ये जो पृथ्वी है वो बिग बैंग से बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। एक दिन संसार में विस्फोट हुआ यानी धमाका हुआ और उससे ये पृथ्वी बन गई और समस्त सृष्टि बन गई। अब विचार कीजिए, धमाके से कभी निर्माण हो सकता है? धमाके से कभी क्रिएशन हो सकती है? धमाके से तो जो बनाया होगा वो बिल्डिंग भी टूट जाएगी, परंतु ये डार्विन का कहना है। लेकिन उन दिनों जब डार्विन ने ये वाला अपना थ्योरी दिया था, उन दिनों एक आस्तिक साइंसदान ने जब ये बात सुनी तो अपनी लेबोरेटरी में सारे साइंटिस्ट जो थे उनको बुलाया और उसने अपनी लेबोरेटरी में एक बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया। वो कैसा था, जैसे ही वो चक्र घुमाया रिमोट से, जब उसको ऑन किया तो वहां पर बादल बन गए, बादल से वर्षा और छोटी छोटी घास उग गए, फिर सूर्य प्रकाश होने लगा, ऋतुएं बदलने लगी, एकदम नेचुरल जैसे संसार में होता है ना, नेचुरलिटी, पूरा नेचुरलिटी उसने उसमें दिखाई। न्यूटन ने जब साइंसदानों को ये मॉडल बताया तो सब लोग खुश हो गए, बहुत खुश हुए और बोले, इतना सुंदर मॉडल है, ये किसने बनाया? न्यूटन ने कहा, कल रात में सो रहा था तो अचानक बम फूटा और मेरी लेबोरेटरी में जोरदार धमाका हुआ, जैसे ही लेबोरेटरी में आया तो देखा ये मॉडल बना पड़ा था। तब उसके मित्रों ने पूछा, क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, बम फूटने से कभी मॉडल बन सकता है? तब न्यूटन ने कहा, बम फूटने से ये छोटा सा मॉडल भी नहीं बन सकता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि बम फूटने से इतना बड़ा पृथ्वी बना है? कैसे हो सकता है? बाई चांस नहीं बना है पृथ्वी, और उसकी सुंदरता बनाने वाला कोई ना कोई है, और वो है भगवान। भगवान है इसका दूसरा प्रमाण। इस संसार में कई वस्तुएं नियम से चल रही हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, अर्थात नियम बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसे जब हम रास्ते पर जाते हैं तो बीच में सिग्नल पड़ते हैं, रेड लाइट पर स्टॉप करना होता है, ग्रीन लाइट पर स्टार्ट करना होता है। तो ये जो सारे नियम से सारी चीजें चल रही हैं, जैसे सूर्य अपने नियम से अपने टाइम से डेली निकलता है, हम तो कभी 6 बजे उठते हैं तो कभी 8 बजे कभी 10 बजे, लेकिन सूर्य अपने टाइम पर उठता है। ऋतुएं जो है वो अपने टाइम पर आती है, देखो मार्च अप्रैल में मई में कितनी तेज गर्मी हो जाती है और फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में इतनी सर्दी हो जाती है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे, ये पृथ्वी जो है सेंटर में है, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, और पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी सेंटर में है ना, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, जनलोक तपलोक महालोक सिद्धलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक। तो उसके अतिरिक्त है दूसरे भी जितने सारे प्लैनेट्स हैं, प्लूटो न्यूट्रन और सेप्टन जितने भी हैं, ये सब घूम रहे हैं, ये सब स्वयं भी घूम रहे हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, ये सब हवा में लटक रहे हैं और आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये पृथ्वी कंटिन्यू जो है वो सूर्य के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, लेकिन कभी भी सूर्य से स्पर्श नहीं हुआ उसका, अगर हो जाता तो क्या होता, भस्म हो जाती। लेकिन ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सब हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इन सब नियमों को, इन सबको बचाने वाला, इन सबको टिकाने वाला कोई ना कोई है जिसने सबको हवा में लटकाए रखा है। तो आज की साइंस क्या कहती है कि ये ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स ने इसको टिका के रखा। भगवान थोड़ी ना इसको टिकाते हैं, बल्कि क्या है, ये फोर्स है। तो परंतु फोर्स है तो फोर्स मतलब बल, साइंस कहता है कि बल बल से टिके होते हैं, तो साइंस को ही ले लीजिए। अगर बल है तो किसी ने, मान लो किसी ने किसी का तो बल होगा ना, बल का मतलब क्या है, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आप कहो कि ये मुझे बल ने मारा है, तो किसी न किसी के बल ने मारा है, बल है अर्थात बलवान कोई है। तो बलवान कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलम बलवताचाहम। भगवान 7.12 में बताते हैं कि बलों का, बलवानों का बल मैं हूँ, कि वो भगवान है। परंतु इसके लिए भगवान हमें नजर नहीं आते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अनुभव नहीं, जब तक हमें इस बात का अनुभव नहीं हो जाता, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें भगवान को देखने के लिए कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बगैर मेहनत के तो हम संसार की साधारण चीजें भी नहीं देख सकते हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। जैसे संसार में हर चीज को देखने के लिए एक विधि है, जरासीम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, और इसके अलावा जो जो चीज हमको देखनी होती है उसके अलग अलग ना बनाए जाती हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसको देख सकते हैं। उसी तरह से भगवान को देखने का तरीका क्या है, ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, के जो संत जो भक्त अपने हृदय में भगवान के प्रेम का अंजन लगाता है उससे भगवान के स्पष्ट दर्शन होते हैं, वो भगवान को दर्शन कर सकता है। यानी भगवान को देखने के लिए चरम चक्षु नहीं, प्रेम, जो भगवान से प्रेम करता है तो उसको याद आ जा, भगवान नजर आ जाते हैं। चलो इस इन सब प्रमाणों से ये तो साबित हो गया कि भगवान का अस्तित्व है, कि भगवान कोई ना कोई है। परंतु भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान हैं कैसे, उनकी रियलिटी क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मात्र एक पोस्ट है, वो कहते हैं भगवान बदलते रहते हैं, आज फिलहाल भगवान है, दूसरे जब दूसरा टाइम आएगा तो दूसरे पर। कुछ लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण थे ना वो द्वापर युग के भगवान थे, अभी इस कलयुग के भगवान कोई और हैं, तो ये वो क्या सोचते हैं कि भगवान एक पोस्ट है। और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कुछ तपस्या और मेहनत करने से कोई भी भगवान बन जाता है, जैसे कुछ मानते हैं कि इतनी मेहनत करोगे ये करोगे तो भगवान बन जाओगे। कुछ कहते हैं कि भगवान थे, मतलब पहले भगवान थे परंतु अभी भगवान नहीं रहे, भगवान आए थे, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे, लेकिन जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था और वो मर गए थे। वास्तव में भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, भगवान का प्राकट्य होता है, तिरोभाव होता है, वो भगवान कभी भी ऐसा नहीं कि भगवान मरते हैं, वो तो सूर्य की तरह है। यदि कोई कहे जैसे सुबह को सूर्य उदय हुए थे, पैदा हुए थे, और संध्या के टाइम पर सूर्य अस्त हो गए, तो बोले सूर्य मर गए हैं, और वो बोले कि चलो ठीक है अब सूर्य मर गए हैं, आइए शोक सभा रखते हैं और बेचारा सूर्य मर गया है, तो क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि सूर्य मरा नहीं है, वो अप्रकट हो गया है, कुछ समय के लिए लुप्त हो गया, फिर कल सुबह सवेरे निकलेगा। तो ये भगवान का कभी क्षय नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, ये सब बेवकूफ हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान शक्ति है, भगवान सिर्फ एक शक्ति है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो शून्य है, निर्विशेष है, उसके अंदर खाली रोशनी है, ज्योति है। तो इस प्रकार भगवान का अस्तित्व, भगवान के अस्तित्व के प्रति सारे लोगों की मन बुद्धि अपनी अपनी अलग अलग धारणा, परंतु वास्तव में भगवान कौन हो सकते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे हम। अब देखो भगवान के विषय में बोलना हमारे अधिकार में इसलिए नहीं क्योंकि हम इंद्रियों के जरिए कैसे जान सकते हैं भगवान, हम इंद्रियों के जरिए इस संसार की छोटी छोटी चीजों के विषय में नहीं जान सकते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे जो सेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट है। तो फिर भगवान को जानने के लिए हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी प्राय एक समाज भगवान को निराकार कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है और कुछ लोग बोलते हैं भगवान साकार है। तो भगवान साकार है या निराकार, इसका उत्तर भगवद गीता और भागवतम में कहा गया है कि भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं। इस कहां पर कहा गया, श्रीमद् भागवतम पहला सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 11। देखिए यदि किसी को ट्रस्ट ना हो तो भागवतम का पहला सिकंद 1.2.11 को खोलकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शास्त्र को नहीं मानते हो आप भगवान को नहीं पहचान सकते। तो शास्त्र क्या कहता है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के एक साथ तीन स्वरूप हैं, तीन फेस हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं भगवान का प्रथम स्वरूप भगवान साकार रूप में अपने धाम के धाम में रहते हैं, वही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं और वही भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने धाम में यानी द्विभुज स्वरूप में रहते हैं तो साकार भी है, कण कण में विराजमान है तो वो निराकार भी है, और अगर वो सबके हृदय में है तो वो परमात्मा भी है। भगवान के तीनों फेस हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के एक ही फेस है। जैसे और वो हमें कैसे समझ में आए, वो हमारी ज्ञान की दृष्टि से जितना जितना हम भगवान के करीब जाते जाएंगे हमें पता चलेगा। ऐसे नहीं फिजिकली वे से नहीं कि भाई जितना मूर्ति के करीब जाएंगे उतना, ज्ञान की दृष्टि से। जैसे आप अगर अपनी विंडो से किसी को अगर दूर से कोई पहाड़ को देखता है ना, दूर बहुत दूर पहाड़ होगा तो वो कैसा दिखेगा, बस नीला नीला दृश्य दिखेगा, उसका कोई आकार समझ में नहीं आएगा कि वो कैसा है, नीला नीला दृश्य दिखेगा तो वो समझेगा कि पहाड़ ऐसा ही होता है। लेकिन वो जैसे जैसे करीब जाता जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये नीला नीला दृश्य नहीं, ये मिट्टी का ढेर है, बहुत बड़ा ढेर है मिट्टी का और ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पहाड़ कहते हैं। लेकिन जो और भी करीब जाएगा और पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखेगा उसे पता चलेगा ये पहाड़ है, इसके अंदर खड्डे हैं, इसके अंदर झील है, इसके अंदर घास है, इसके अंदर फल है, इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, ये सब उसको कब पता चलेगा, जब उसके बहुत 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 करीब जाता जाएगा। उसी तरह जैसे जैसे असल में ये पहली डेफिनेशन कि वो नीला दृश्य है वो गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, वो दूसरी डेफिनेशन कि वो मिट्टी का ढेर है वो गलत नहीं है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसी तरह तीसरी डेफिनेशन जो कि ये बोला जाता है कि भगवान जो है वो सॉरी पहाड़ जो है वो सब कुछ है, उसके अंदर पहाड़ के अंदर दरख्त हैं, वृक्ष हैं, जड़ी बूटियां हैं, नदियां हैं, वो कंप्लीट डेफिनेशन है। तो उसी तरह से देखो छोटा बच्चा होता है वो क्या समझता है, हम क्या अगर कोई ये सोचे कि सूर्य प्रकाश जो हमारी विंडो से हमारी खिड़की में आ रहा है वही सूर्य है, सूर्य क्या है जो धूप हम देख रहे हैं जो प्रकाश आ रहा है वही सूर्य है, लेकिन थोड़ा अगर उसका ज्ञान बढ़ा चढ़ा होगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं ये धूप है और वास्तविक सूर्य क्या है जो सामने गोल गोल चमक रहा है वो सूर्य है। तो जो पहले धूप को सूर्य मानता था वो गलत डेफिनेशन नहीं थी मगर इनकम्प्लीट थी, लेकिन जब उसने देखा कि जो सामने सूर्य चमक रहा है गोल गोल थाली के जैसा वो सूर्य है तो इसकी डेफिनेशन उससे बढ़कर है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो सूर्य के विषय में सब कुछ जानता है कि सूर्य की रेंज क्या है, उसका देवता कौन है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो किस तरह से अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो ये सब जब जिसको पता होगा वो सूर्य के वास्तविक रूप को जानता है। इसी तरह से जो भगवान के निराकार रूप को जानते हैं कि भगवान ज्योति है, तो ज्योति आई कहाँ से है, वो उसी भगवान से निकली है ना, रोशनी है तो अर्थात रोशनी पुंज कोई है, कोई ना कोई तो है जहां से, कहीं ना कोई जगह है जहां से ये रोशनी निकल रही, खाली रोशनी कैसे हो सकती है, तो भगवान का जो दिव्य शरीर है उसकी रोशनी जो है वो निराकार ज्योति है, तो वो भगवान का निराकार स्वरूप है। वो डेफिनेशन गलत नहीं है कि भगवान निराकार है लेकिन इनकम्प्लीट है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है, भगवान का एक साकार रूप है लेकिन वो उसका कोई धाम नहीं है, वो सिर्फ सब प्राणियों के हृदय में रहता है। वास्तव में भगवान सब प्राणियों के हृदय में रहता है बट वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। भगवान जो सबके हृदय में रहता है उसका कोई ना कोई अस्तित्व है, वो कौन है जो सबके हृदय में रहता है, वो गोलोक वृंदावन धाम में बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण है जो कि सबके हृदय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 13.23 में उपदृष्टा हनुमंता से भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन पुरुष में ही समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठ जाता हूँ और सबके हृदय में बैठकर उनके कार्यकलापों को देखता हूँ। तो ये तीन चीजें तीन फेस जो हैं भगवान के, कि भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है और भगवान परमात्मा भी है, ये भगवान की कंप्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे भगवान साकार है या निराकार, तो आप बोलोगे कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, परमात्मा भी है। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्याई को देखा है, जो शास्त्र है वो क्या कहता है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान के तीन फेज हैं, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। और ये तीनों क्यों है? क्योंकि भगवान को पूर्ण होना चाहिए। ईशोपनिषद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का गुण है कि उसे पूर्ण होना चाहिए। अगर भगवान निराकार है तो वो पूर्ण कैसे हो सकता है? उसके पास तो आकार ही नहीं है, उसके पास तो हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, जांघे नहीं, हृदय नहीं, तो उसको भगवान कैसे कह सकते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं? तो वो निराकार नहीं है। भगवान निराकार का निराकार जो है उसका एक फेस है भगवान का, वो उसकी रोशनी है, लेकिन उसका अपना एक आकार है। लेकिन अगर भगवान खाली साकार रूप में यानी विग्रह रूप में मंदिर में रहते हैं और भगवान निराकार रूप में कण कण में नहीं है, तो फिर हम बाहर मंदिर से बाहर भगवान को कैसे साबित कर सकते हैं कि वहां पर भी है? वहां पर जाकर अगर रास्ते में हमारे ऊपर कोई विपदा आ रही है और वहां पर तो मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर भगवान हमें कैसे बचा सकते हैं? तो भगवान को निराकार भी होना चाहिए, भगवान को साकार भी होना चाहिए। और कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, तो फिर हम मनुष्य भगवान की इच्छा के बगैर, भगवान की सहायता के बगैर कोई कार्य कैसे कर सकते हैं? कोई भी जीव भगवान की इच्छा के बगैर कार्य कैसे कर सकता है? तो हर एक के हृदय में भी भगवान होने चाहिए अनुमति देने के लिए, भगवान उसकी सहायता करने के लिए हृदय में भी होने चाहिए। ये भगवान की कंप्लीट डेफिनेशन है कि वो निराकार भी है, साकार भी हैं और परमात्मा भी हैं। यदि इस पर किसी को डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि इसके विषय में मैं बहुत 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 बता सकती हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान ये सारे कैसे हो सकते हैं, तो वो प्रमाण मुझसे मांग सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। दूसरा कि भगवान जो है निराकार है, वो भगवान का ही स्वरूप है। वास्तव में भगवान का मूल रूप जो है वो क्या है? साकार है। निराकार उसी में से निकलता है। जैसे आपका ये प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान निराकार भी है, साकार भी है, तो उनका रियल स्वरूप कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि भगवान का रियल स्वरूप, जो परफेक्ट स्वरूप है, वो साकार है, क्योंकि साकार से ही निराकार उत्पन्न होता है। अब बोलोगे क्या प्रमाण है इसका? गीता प्रमाण है, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 27 अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यय यस्य च, यानी कि ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा, जो निराकार ब्रह्म है उसको वो उसका आश्रय मैं हूँ, मुझसे ब्रह्म ज्योति निकल रही है। जो रोशनी जिसको आप भगवान कह रहे हो वो मुझसे निकलती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में भगवान को निराकार कहने वाले गलत नहीं है, परंतु उनका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है। भगवान को निराकार समझना आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। यदि वो व्यक्ति धीरे धीरे पहले भगवान, पहले निराकार, फिर परमात्मा और फिर भगवान के साक्षात्कार और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करता है, तो फिर उसका ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। जैसे चार कुमारों ने सबसे पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे। आदि शंकर आचार्य वो सदैव वो जो है निराकार ब्रह्म के आचार्य हैं, लेकिन बाद में वो भगवान के साकार रूप को समझ गए और कहने लगे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूर्मति। अतएव ब्रह्म पद पर उठने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती है, यदि भगवान को समझना नहीं जाता है, तो गिरने का भेद रहता है कि हो सकता है कि हम गिर जाएं। इसलिए भगवान को तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर पता चला कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है, तो क्वेश्चन ये है कि फिर ये परमात्मा कौन है जिसके लिए भगवान ने कहा है कि वो परमात्मा है? तो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जो आपको अनुमति दे रहा है, वो परमात्मा है। तीनों समझ में आ गए? जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपसे कार्य करवाता है, वो परमात्मा है। जो ब्रह्म के सूरत में कण कण में व्याप्त है वो निराकार ब्रह्म है, और जो साक्षात भगवान का रूप है जिसके विषय में कहा जाता है कि वो इतना सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी इसको देखकर मूर्छित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, परमात्मा भी हैं, जो तीनों रूप में हैं, वो आखिर है कौन? भगवान कौन है? Who is God? और हमारे मजहब का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू धर्म जो है उसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आज हमारे लिए है वो यही है कि भगवान कौन है। वैसे तो आप लोग बता सकते हो, जैसे भगवान जिस जिस भगवान के जो भक्त होते हैं वो बोल सकते हैं, जिस देवता के भक्त होंगे वो बोलेंगे कि ये भगवान है, ये भगवान है, लेकिन साबित करना है, प्रूफ देना है कि भगवान कौन है। तो भगवान को जानने के लिए 5 चीजों का परीक्षण करना चाहिए। वैसे तो भगवान के अंदर अनेकों क्वालिटीज हैं जो उन्हें साधारण देवी देवताओं से या अवतारों से अलग करती हैं, लेकिन फिर भी 5 मुख्य चीजें हैं। अगर किसी के अंदर ये हैं तो समझो कि वो भगवान है। पहला है जो परम नियंता यानी सुपर कंट्रोलर है, वो भगवान हो सकता है। दूसरा है जो सभी वस्तुओं का स्रोत है, यानी जितनी भी चीजें संसार में हैं वो उन्हीं से प्राप्त उत्पन्न होती हैं, वो भगवान है। और तीसरा है जो पूर्ण है वही भगवान हो सकता है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना हो वो भगवान हो सकता है। और चौथा है जो सब जगह हर समय सब जगह व्याप्त हो वो भगवान हो सकता है। और पांचवा है वेद व्यास जी के पिताश्री जिनका नाम पाराशर मुनि था, उन्होंने भगवान की डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन के द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं कि भगवान कौन है। वे कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यस्य एव शरणं भग इति गणः। जिस व्यक्ति के पास ये 6 प्रकार के गुण 100% हो यानी परिपूर्ण मात्रा में कंप्लीट हो, वो 6 गुण कौन से हैं? सुंदरता, धन, बल, ज्ञान, यश और वैराग्य। अर्थात जिस व्यक्ति में संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश यानी फेम, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैराग्य यानी डिटेचमेंट हो, वो ही भगवान हो सकता है। ये है भगवान शब्द की व्याख्या। अब आप बताइए कि ये 5 योग्यताएं किस में है? जानते भी होंगे तो इस संसार में अगर हम बोलेंगे कि भाई ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो किस में है? कृष्ण में है, तो फौरन बोलेंगे कि भाई इसका प्रूफ क्या है? तो आपको इसका प्रूफ पहले हम कल बताएंगे, आज आप लोग इस बात पर पहले टिको कि ये भगवान हो सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। और एक एक करके सारे प्रमाण दूंगी मैं कि ये भगवान के अंदर कैसे हैं, भगवान परम नियंता कैसे है, भगवान परम कंट्रोलर कैसे है, सारी चीजों का स्रोत कैसे है, पूर्ण कैसे है, हर जगह हर समय कैसे व्याप्त है, और सबसे सुंदर कैसे है, सबसे बलवान कैसे है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान कैसे है, इसका प्रूफ मैं आपको कल दूंगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब जो कुछ पढ़ा उसमें से आपको जो कुछ समझ में आया है या नहीं आया है जरूर शेयर कीजिएगा। जिस चीज में थोड़ा सा भी संशय है आपको वो जरूर पूछना चाहिए, अपना संशय क्लियर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।